शान कुछ पल गुस्से से उसको घूरता रहा, फिर दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, मत आओ मेरे साथ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे नखरे उठाने का। ये तो तुम गलती से भी मत सोचना कि मैं तुम्हें मनाकर घर लेकर जाऊंगा। तुम कहीं भी रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लो कि अगर अभी मेरे साथ तुम घर वापस नहीं गई, तो उस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोबारा पलटकर उस घर की तरफ निगाहें उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना। इतना कहकर शान गुस्से में लंबे लंबे डग भरते हुए वहां से जाने लगा। शान की आखिरी के कहे शब्द आरवी के कानों में शीशे के कीर्चों की तरह चुभने लगे। अब तक जो नमी आंखों में ठहरी हुई थी, वो उसकी आंखों से आंसू बनकर बह चली। वो भरी निगाहों से जाते हुए शान को देखने लगी। धीरे धीरे शान उसकी आंखों से ओझल हो गया। आरवी ने अपनी हथेलियों से अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ लिया, और जैसे ही माता रानी की मूर्ति की तरफ निगाहें घुमाई, सामने खड़े पंडित जी और बुजुर्ग लोगों पर उसकी नज़र पड़ी। सभी परेशान से आरवी को ही देख रहे थे। आरवी उन्हें देखकर अपना दर्द छुपाकर हौले से मुस्कुरा उठी। तभी पंडित जी उसके पास चले आए और चिंता भरे स्वर में बोले, बेटा, आप सुबह से यहाँ बैठी हैं। हमने इतनी बार आपसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, यहाँ कैसे आईं और अपने घर क्यों नहीं जा रहीं, पर आपने हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी आपकी उस आदमी से बहस सुनकर हमें आपकी चिंता होने लगी है। पंडित जी ने इतना कहा ही था कि आरवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं ठीक हूँ। बस मन कुछ उचाट था तो सुकून की तलाश में यहाँ माता रानी के दरबार तक पहुँच गई। यहाँ आकर जख्मी दिल को कुछ राहत का एहसास हुआ, इसलिए यहीं रुक गई। कुछ देर में चली जाऊंगी घर, क्या तब तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ? माँ का दरबार तो सदैव सबके लिए खुला रहता है ना, क्या मुझे इस दरबार में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? वो खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसका दर्द उसकी आंखों में झलक रहा था। पंडित जी उसकी शान से बहस सुन चुके थे और समझ रहे थे कि अभी वो शायद बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने उसको बड़ी ही आसानी से यहाँ रुकने की इजाज़त दे दी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, माता रानी का दरबार तो अपने बच्चों के लिए सदैव ही खुला रहता है, आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकती हैं। आरवी उनकी बात सुनकर हौले से मुस्कुरा दी और मन ही मन बोली, जिन्हें चिंता होनी चाहिए थी उन्हें तो मुझसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, और इन अनजान लोगों को मेरी इतनी परवाह हो रही है। अजीब विडंबना है जीवन की, जहां उम्मीद हो वहां बड़ी ही बेदर्दी से उसे तोड़ा जाता है, और जहां कोई आस ही ना हो वहां सहारा देने वाले हजारों कंधे मिल जाते हैं। पंडित जी वापस माता रानी के श्रृंगार में लग गए। आरवी एक बार फिर सूनी निगाहों से माता की मूर्ति को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ आरवी गुस्से में वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका था। उसने गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर बैठने को हुआ, उसका फ़ोन बज उठा। शान ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो फ़ोन घर से था, मतलब साफ था कि फ़ोन आरवी के बारे में पता करने के लिए ही आया होगा। शान ने अपने जबड़ों को भींचते हुए फ़ोन उठाया, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से अंशु की रुआंसी सी आवाज़ आई, डै डी। उसकी आवाज़ से ही पता लग रहा था कि वो रो रही थी। अंशु में शान की जान बसती थी। उसकी रुआंसी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने चिंता भरे स्वर में उसको पुचकारते हुए कहा, हाँ बेटा, डैडी है। क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रही हैं? डैडी को बताइए, डैडी हैं आपके पास। रोना बंद कीजिए बच्चे, बताइए डैडी को क्या हुआ है। डैडी, मम्मा नहीं मिल रही डैडी। मम्मा फिर से अंशु को अलोन छोड़कर चली गई। डैडी, मम्मा चली गई डैडी। अंशु को भी मम्मा के पास जाना है। अंशु को मम्मा के बिना अच्छा नहीं लगता। शान का माथा ठनक गया अंशु की बातें सुनकर। इन सब में वो अंशु को तो भूल ही गया था। भले ही उसको आरवी के होने न होने से फर्क न पड़े ऐसा वो कह रहा था, पर अंशु का क्या? अंशु तो आरवी से इतना अटैच्ड है कि अगर कुछ पल आरवी उसे ना दिखे तो रो रोकर सारे घर को सर पर उठा लेती है। आरवी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। उसकी सुबह भी आरवी से होती है और रात भी उसके साथ होती है। वो कैसे रह सकेगी आरवी के बिना? आरवी को गए कुछ घंटे ही हुए हैं और अंशु का ये हाल है। भला वो आरवी से अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपनी मासूम सी बेटी का दिल कैसे तोड़ सकता था? जिस बेटी को आज तक फूलों की तरह संभाल कर रखा, उसको दुनिया की हर खुशी देनी चाहिए, कैसे उसके दुखों की वजह खुद बन जाता? उसका सारा गुस्सा जैसे अंशु के आंसुओं से धुल गया। अंशु के लिए उसका प्यार आरवी के प्रति उसकी नफरत पर भारी पड़ चुका था। उसने बड़े ही प्यार से अंशु को समझाते हुए कहा, अंशु बेटा, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं गई है, वो डैडी के साथ हैं और डैडी बस उन्हें लेकर आपके पास ही आ रहे हैं। अब रोना बंद कीजिए, वरना डैडी मम्मा को लेकर वापस नहीं आएंगे। उसके इतना कहते ही अंशु ने झट से कहा, नो डैडी, बेबी अब क्राई नहीं करेगी, आप मम्मा को ले आइए। हाँ बेटा, डैडी मम्मा को लेकर आ रहे हैं। शान ने उसको समझाकर फोन काटा और गहरी सांस छोड़ते हुए वापस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी तरफ फोन कटते ही अंशु उसके पास बैठी अर्पिता जी से लिपट गई और उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। ये उन्हीं का प्लान था। शान को गए काफी वक्त हो गया था और अभी तक उसकी या आरवी की कोई खबर नहीं आई थी। वो तो शान से नाराज थी तो खुद फोन नहीं कर सकती थी और वो शान के गुस्से से भी बखूबी वापस थी। जाहिर सी बात थी, अगर आरवी गुस्से में उससे रूठ कर गई है तो आसानी से वापसी के लिए मानेगी नहीं, और शान जिस तरह गुस्से में यहाँ से गया था वो उसको मनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। अपने गुस्से में वो उनकी कही बात भी भूल जाएगा। ऐसे में अगर कोई है जो उसके गुस्से को हरा कर आरवी को मनाकर घर लाने के लिए राजी कर सकता है तो वो सिर्फ अंशु ही थी। इसलिए उन्होंने अंशु को सब समझाकर शान को फोन लगा दिया। नन्ही अंशु ज्यादा कुछ तो नहीं समझी, पर अपनी मम्मा को वापस लाने के लिए उसने सब वैसे ही किया जैसे अर्पिता जी ने कहा था और उनका प्लान कामयाब हो गया। आरवी शान के साथ थी ये जानकर उन्हें तसल्ली हुई। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि जल्दी आरवी को वापस घर ले आएगा। दूसरी तरफ आरवी अब भी गुमसुम सी बैठी सूनी निगाहों से माता की मूर्ति को ताक रही थी और कानों में शान की कल रात से लेकर अब तक की बातें गूंज रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो कानों में किसी ने शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। आरवी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी अचानक किसी ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। आरवी चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई और सर घुमा कर देखा तो ये शान ही था जो उसको उठाए हुए अब मंदिर से निकलने के लिए आगे बढ़ गया था। पहले तो आरवी उसको वहां देखकर चौंक गई और आंखें फाड़े हैरानी से उसको देखने लगी, पर जैसे ही उसको एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, आरवी के भाव एकदम से बदल गए। उसने उसकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी।
टू बी कंटिन्यूड।